तो आज का सेशन कराने जा रही है हमारी शैली बहन का हम परिचय देंगे। हमारी ब्रह्मा कुमारी शैली बहन, आप बेसिकली महाराष्ट्र से हैं और आज विशेष सेशन के लिए हमारे साथ उपस्थित है। हमारी शैली बहन ने अपनी प्राथमिक पढ़ाई पूरी करके 2002 से इस ईश्वरी सेवा में पूरी तरह से समर्पित किया। आपने बहुत सारी डिग्रियों को प्राप्त किया है। आपने सबसे प्रथम आप अभी पंजाब जोन अंबाला में अपनी सेवाएं देती हैं। आपने फिजिक्स में बीएससी, वैल्यू एंड स्पिरिचुअलिटी में एमएससी किया है। सेल्फ मैनेजमेंट एंड क्राइसिस मैनेजमेंट में आपने एमबीए किया है एंड योगिक साइंस में आपने पीएचडी किया है। आप सेट विंग की पंजाब जोनल कोऑर्डिनेटर हैं और आप साइंटिक्स एंड इंजीनियर विंग के भी एक्टिव मेंबर हैं। आपने 2006 में स्वर्णिम भारत युवा पद यात्रा में भी बहुत अच्छी तरह से एक्टिव प्ले रोल अपना किया है और उसके अंदर कई स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज एंड क्लब्स में भी बहुत अपनी अच्छी सेवाएं दी हैं। आपको इन सेवाओं के कारण ही हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से वैल्यूज फॉर ह्यूमन एंड एथिक्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अभी अभी आप रशिया में भी एक स्पिरिचुअल रिट्रीट करके जस्ट माउंट आबू पहुंचे हुए हैं। ऐसी अनेक विशेषताओं की धनी हमारी शैली बहन आज राज्योग का सेकंड सत्र लेने जा रही हैं। आज आपका टॉपिक है परमात्मा का परिचय। कल का जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो आप सभी में जितने यहाँ बैठे हैं कितनों ने अटेंड किया था? बहुत अच्छा, क्योंकि ये एक सीरीज है और कल का लेसन यदि आपने किया हो तो आज का लेसन बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये राजयोग पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को हमारे बहुत अच्छी तरह से चेंज करता है। तो आज हम सुनेंगे परमात्मा का परिचय बीके शैली बहन से।
ओम शांति। थैंक यू शुभांगी दीदी। आज दिन है परमात्मा के परिचय का। हमारे इस मानव जीवन में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाने वाला ये दिन क्यों ऐसा मैं कह रही हूं? क्योंकि जिस परमपिता को, परमात्मा को ढूंढने, उसे पाने के लिए सदियों से ऋषि मुनि तपस्या करते आए हैं, अनेकों रूपों में उसे ढूंढते आए, अनेकों तीर्थ स्थानों पर उसे ढूंढते आए, लेकिन आज परमात्मा अवतरण भूमि इस माउंट आबू के तपोभूमि पर आज हमें परमात्मा का वो सत्य परिचय मिलने जा रहा है जो कि स्वयं परमात्मा ने आकर दिया है। राजयोग शिविर के पहले सत्र में हमने अपने बारे में समझा कि हम ये शरीर नहीं लेकिन एक अभौतिक सत्ता, एक मेटाफिजिकल एनर्जी आत्मा है, आत्मा जो इस शरीर के द्वारा कार्य कर रही है। तो जब स्वयं का परिचय मिला तो साथ साथ अगर हम परमात्मा को भी जान जाएंगे तब हमें मेडिटेशन करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि मेडिटेशन की सिंपल सी डेफिनेशन है आत्मा का परमात्मा के साथ प्यार भरा संबंध। तो उसमें हमने आत्मा को जान लिया, अब परमात्मा को जानेंगे। आप में से कितने हैं जो परमात्मा को मानते हैं? हाथ उठाएंगे? मैं प्रश्न पूछते हुए मुस्कुरा इसलिए रही हूं क्योंकि आप जिस भूमि पर बैठे हैं बिना माने तो आप यहां आ ही नहीं सकते। मानते हम सभी हैं, जानते कितने हैं। जिस तरह से हम अपना परिचय देते हैं, अपने लौकिक पिता का परिचय देते हैं, तो क्या इसी तरह से परमात्मा का कंप्लीट परिचय हमारे पास है? और क्या जानना जरूरी है कि परमात्मा कौन है? वैसे भी तो दुनिया चल रही है, वैसे भी तो जिंदगी चल रही है, तो जानना जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्योंकि कल हमने समझा आत्मा जिन सात गुणों से बनी हुई है, आज के हमारे जीवन में उन सातों गुणों की परसेंटेज कम होती जा रही है, और फिर से अपने आप को उन गुणों से भरपूर करना हो, जिसे इस कॉन्फ्रेंस का थीम बनाया गया है, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, तो फिर से अपने आप को उन सद्गुणों से भरपूर करने के लिए उस सद्गुणों के सोर्स, पॉजिटिविटी का जो सोर्स है परमात्मा, उसके साथ कनेक्शन जरूरी है, और वो कनेक्शन जोड़ने के लिए परमात्मा का परिचय जरूरी है। देखिए, किसी को भी पूछा जाए कि परमात्मा या भगवान कितने हैं, तो हर किसी का आंसर क्या होगा? गॉड इज वन, सबका मालिक एक है। लेकिन अगर हम ये पूछे कि वो कौन है या वो कैसा है, तो जितने मुख उतनी बातें। परमात्मा के लिए अगर पूछा जाए, सर्वे किया जाए कि कौन है परमात्मा, तो जैसे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवताओं को भी हम भगवान कह देते हैं, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, माँ दुर्गा, हनुमान जी, गणेश जी और अनेकों, और उनको हम भगवान मानकर उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं, तो क्या वो सच में परमात्मा है? जिन धर्म पिताओं ने धर्म स्थापन किया, क्या वो रिलीजियस फाउंडर्स वो परमात्मा है? जो संत महात्माएं होकर गए, जिन्होंने समाज के प्रति, दुनिया के प्रति बहुत कुछ अच्छे कार्य किए, एक अच्छी दिशा दी, अच्छी शिक्षाएं दी, क्या हम उनको भगवान कहें? किसको भगवान कह सकते हैं? या ये जो प्रकृति जो हम सबको निरंतर देती जा रही है, उसे हम परमात्मा का दर्जा दें? इतने सारे रूप परमात्मा के हमने आज तक माने, उन सबको हम भगवान मानते आए, अलग अलग तरह से, अलग अलग रीति रस्मों से उनके प्रति अपना रिस्पेक्ट हम देते आए। अब जहां तक बात है रिस्पेक्ट की, ये सभी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, मानते हैं सभी, चाहे वो देवताएं हैं, चाहे वो धर्म पिताएं हैं, संत महात्माएं हैं, या ये नेचर है, इन सब से हमें कुछ ना कुछ मिला है, इन सब से हमने जिंदगी को आसान करने के लिए बहुत कुछ पाया है, और इसलिए उनका रिस्पेक्ट करना हमारा फर्ज बनता है। अगर हम उनको रिस्पेक्ट ना दें तो ये गलत होगा। लेकिन किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए हम अगर उनसे बढ़कर दर्जे के साथ उनको संबोधित करना शुरू करें, मान लीजिए एक शहर में जो विधायक है या मंत्री है, नेचुरली आम जनता से बढ़कर उनका दर्जा होगा, लेकिन उन मंत्री जी को, उन विधायक जी को हम भारत का राष्ट्रपति तो नहीं कह सकते। राष्ट्रपति का पद अपना है, वह अथॉरिटी अपनी है। विधायक मंत्री हो सकता है हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, जनता के लिए काम कर रहे हैं, वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। इसी तरह से जो भी देवताएं हैं, धर्म पिताएं हैं, संत महात्माएं हैं, इवन प्रकृति, नेचर, हम कभी भी ब्रह्मा कुमारी के प्लेटफॉर्म से ये नहीं कहते कि आप उनको नहीं मानो। आप उनको मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, और उनको मानने के साथ साथ उन्होंने जो शिक्षाएं दी है उसको भी हम मान के चले तो और सोने पर सुहागा होगा। श्री राम जी के जीवन चरित्र को अगर हम फॉलो करें, ऐसे मर्यादा युक्त अपने जीवन को बनाए तो कितना अच्छा होगा। लेकिन देखा क्या जाता है कि हम पूजा तो श्री राम जी की कर रहे हैं लेकिन कर्म मैं नहीं कहूंगी, हम सभी महसूस करते हैं दुनिया भर में और हमारे देश में जो भी घटनाएं हो रही है, जितने क्राइम्स बढ़ रहे हैं, और ऐसे में परमात्मा को न जानकर अनेकों रूपों में उसको मानते हुए कहीं न कहीं हम परमात्मा के सत्य परिचय से वंचित और उनसे होने वाली प्राप्तियों से वंचित हो रहे हैं। और इसीलिए ये जानना अत्यधिक जरूरी हो जाता है कि वास्तव में परमात्मा है कौन। इतनी मते हैं परमात्मा के बारे में दुनिया में, जैसे कोई उसको निराकार कह देता, कोई ग्रंथ और शास्त्रों को भगवान मान लेते, कोई कहते कि भगवान तो कण कण में व्यापक है, हर सजीव निर्जीव चीज में परमात्मा मौजूद है, उपस्थित है, कोई स्पिरिट्स को परमात्मा मान लेते और कोई कहते कि अरे छोड़ो इन सभी बातों को, वर्क इज वर्शिप, अपने काम पर ध्यान दो, बस इसी में हमें भगवान मिल जाएगा, तरह तरह की मत। तो आखिर अगर हमें भगवान को पाना है, उसके साथ कनेक्शन जोड़ना है, अपने आप को स्पिरिचुअली एम्पावर करना है, तो पता तो चले कि भगवान कौन है। सबसे शुरू में हमने बात कही जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बात है कि गॉड इज वन, परमात्मा एक है। और जब हमने उनके परिचय को जाना चाहा तो कितने तरह के परमात्मा के रूप हमारे सामने आए। तो आखिर हम कैसे समझें कि परमात्मा है कौन? और है कौन ये समझने से पहले ये प्रश्न उठता है कि अगर वो एक है तो इतने सारी मान्यताएं क्यों, इतने सारे उसके रूप, इतने सारे उसके नाम क्यों दिखाए गए? तो एक छोटी सी स्टोरी आपके सामने है। कहते हैं कि एक बार 5 नेत्रहीन व्यक्ति जिनको हाथी को देखने की जिज्ञासा थी, उनको एक उनका फ्रेंड हाथी के पास ले गया। नेत्र नहीं है, आंखें नहीं है तो कैसे देखेंगे? इनकी टच सेंसेशन बहुत पावरफुल होती है, तो टच करके हाथी को देखने लगे। और हर एक का व्यू देखिए क्या है, जिस व्यक्ति ने हाथी के सूंड को हाथ लगाया उसको लगा कि हाथी सांप जैसा है, जिसने हाथी के कानों को हाथ लगाया वो सोच रहा है कि हाथी हवा लेने वाले पंखे की तरह है, जिस व्यक्ति ने हाथी के पीठ या पेट पर हाथ फेरा वो सोच रहा है कि हाथी एक नरम दीवार की तरह है, चौथा व्यक्ति जो हाथी के टांगों को उसके लेग्स को छू रहा है उसे लगा कि हाथी एक पिलर की तरह है, और जो नेक्स्ट 5th पर्सन है वो सोच रहा है कि हाथी एक रस्सी की तरह है क्योंकि उसने हाथी के पूंछ को पकड़ा है। तो हम देखेंगे ये 5ों ही नेत्रहीन व्यक्ति टच एक ही हाथी को कर रहे हैं, लेकिन उनकी अंदर जो फील वो कर रहे हैं कि हाथी कैसा है, उनका जो परसेप्शन है वो डिफरेंट हो रहा है। तो इसमें से मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है? बहुत सही जवाब भाई साहब, हम झूठ किसी को भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो कंप्लीट सच नहीं है, अधूरा सच है। और कहा जाता है अधूरा सच कई बार झूठ से भी अधिक खतरनाक हो सकता है। ये कहानी मैंने टाइम पास के लिए नहीं सुनाई, सेम यही स्टोरी हम सबके साथ हुई है। हम सभी ने जब भगवान को ढूंढना और उसको पाना चाहा, हम फिजिकली ब्लाइंड तो नहीं थे बट वी वेर स्पिरिचुअली ब्लाइंड। नॉलेज जो थर्ड आई है वो ज्ञान का तीसरा नेत्र हमारे पास नहीं था, और उस स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस में जब हमने भगवान को पाना चाहा, देखिए लगन सच्ची रही होगी, प्रयास बहुत सिंसियर रहे होंगे, तो जरूर कुछ तो मिला होगा। और जो मिला उस आधार पर हमने परमात्मा के प्रति अपनी आस्था बनाई। मान लीजिए किसी को परमात्मा से शांति का अनुभव हुआ, कि कितना सुकून मिलता है जब हम परमात्मा की शरण में आते हैं। वो वही ठहर गया और उसने सोचा कि परमात्मा माना शांति, जहां शांति मिलती है वो परमात्मा है। किसी को परमात्मा की शक्ति का अनुभव हुआ, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड, उसने उस रूप में परमात्मा को मानकर वैसा ही कोई आइडोल, कोई मूर्तियां बनाकर परमात्मा की पूजा शुरू की। किसी को परमात्मा की दया का, क्षमा का अनुभव हुआ, तो किसी को उसके न्याय का अनुभव हुआ। ये सारे गुण परमात्मा के हैं। जैसे यहां पर हम देख रहे कि सारे पार्ट्स तो हाथी के ही हैं, लेकिन वो एक पार्ट माना हाथी नहीं है। इसी तरह से अलग अलग गुणों का अनुभव जो परमात्मा से हुआ, ढूंढने वाला व्यक्ति वही ठहर गया। मेरा अनुभव सच है, लेकिन दूसरे का अनुभव भी सच है, उतनी ब्रॉड मेंटालिटी नहीं रही। देखिए तीन ड्रॉबैक्स यहां आ रहे हैं उनके मतभेद के। फर्स्ट, दे वेर ब्लाइंड। सेकेंडली, एफर्ट वॉज लिमिटेड। एंड थर्ड वन, ईगो क्लैशेस, मैं ही राइट हूं बस। आज जितनी भी धर्म और भगवान के नाम पर लड़ाइयां होती है, उसका कारण यही है। एक तो हम स्पिरिचुअली ब्लाइंड हैं, परमात्मा को सही तरीके से नहीं जान पा रहे हैं। दूसरा, एफर्ट हमारा लिमिटेड रहा, परमात्मा के एक एक गुण को हमने संपूर्ण परमात्मा का परिचय मान लिया। और तीसरा, जब कोई दूसरा व्यक्ति भी परमात्मा के प्रति अपना अनुभव शेयर कर रहा है, तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, मेरा भगवान ज्यादा ऊंच है, जबकि मेरा और तेरा भगवान कहने के लिए भगवान कोई दो चार दस तो है ही नहीं है, भगवान तो एक ही है। तो वो एक परमात्मा कौन है, कैसा है, वो कैसे पता चलेगा? तो जैसे मैथमेटिक्स में हम अननोन टू नोन फिगर्स तक जाते हैं, तो इसी तरह से परमात्मा के बारे में अगर हम एक कसौटी अप्लाई करें कि परमात्मा कैसा है, कैसे पता चलेगा, बहुत सारी मान्यताएं हैं, लेकिन उसमें से अगर हम कॉमन बिलीफ्स को लें कि हर धर्म, हर देश, हर वर्ग का व्यक्ति जब भी भगवान की बात सामने आती है तो उसके माइंड में क्या आता है, तो अगर ऐसी कुछ बातों को ले तो वो पांच बातें हमारे सामने आती है, और उन पांचों कंडीशंस को हम एक कसौटी के रूप में यूज कर सकते हैं कि इतने सारे जो भगवान के रूप माने गए, तो वास्तव में उसमें से कौन सा रूप है परमात्मा का। तो ये पांचों कंडीशंस आप नोट कर सकते हैं अपने पास। फर्स्ट, ओमनीसाइंट, परमात्मा को सर्वज्ञ कहा गया है। मानते हैं आप अपने मन की आस्था में भी उसको चेक करते जाए, भगवान सब कुछ जानता है, जानता है ना। दूसरी बात, परमात्मा को ऑलमाइटी, ओमनीपोटेंट कहा गया, वो सर्वशक्तिमान है। परमात्मा की शक्ति से ये संसार चल रहा है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ये भी हर मानव मानता है। परमात्मा के लिए तीसरी कंडीशन आती है कि वो सुप्रीम है, सर्वोच्च, उसके ऊपर और कोई नहीं। अगर उसके ऊपर कोई होता तो हम उसको परमात्मा कहते। सिंपल सा लॉजिक, परमात्मा अर्थात सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च, और परमात्मा के लिए कहा गया है कि वो सर्वोपरि है। इसको थोड़ा सा क्लियर हम करना चाहेंगे, अर्थात जितनी भी लाइफ की ड्युअलिटीज होती है, जितनी सारी सापेक्ष बातें होती है, जन्म मरण, निंदा स्तुति, सर्दी गर्मी, इन सभी बातों से वो परे है। इन किसी के भी प्रभाव से परमात्मा के अंदर किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता है, और इसीलिए ईश्वर को सत्य भी कहा गया है, गॉड इज ट्रूथ। उसमें ना किसी तरह का परिवर्तन आता है और ना कभी वो विनाश होता है, वो सर्वोपरि है। ये भी हम सभी ने मानी हुई बात है, और एक जरूरी बात कि वो सभी के द्वारा एक्सेप्टेड है। ऐसा नहीं कि किसी एक धर्म के, किसी एक रीजन के लोग उसको मान रहे हैं और दूसरे नहीं मान रहे। तो वो देवता हो सकता है, वो धर्म पिता हो सकता है, वो महात्मा हो सकता है, लेकिन परमात्मा तभी कहला सकता है जब सभी धर्म के लोग उसको माने। तो ये पांच कंडीशंस, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च, सर्वोपरि और सर्वधर्म मान्य, इन पांचों कंडीशंस को जो फुलफिल करे, हम उसी को भगवान कह सकते हैं, हम उसी को परमात्मा कह सकते हैं। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी तक की जितनी सारी मान्यताएं, अलग अलग रूप हमने देखे, उनमें से किसको कहा जाएगा भगवान? आप खुद ही भी अपने हिसाब से इस पर चिंतन कर सकते हैं। जिन जिन के प्रति अभी तक हम भगवान उनको मानते आए, उन पर ये पांचों कंडीशंस अप्लाई करके देख सकते हैं। अभी तक ये जो सारे अलग अलग रूप थे वो उस तरह से थे जैसे वो हाथी की कहानी थी। हम आप, हम सभी ने जितना परमात्मा को महसूस किया उतना हमने उसको मान कर चले। इसलिए कहा जाता है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लेकिन सच में वो कैसा है, कैसे पता चलेगा? आपने बताया मैं ऐसी हूं, किसी और ने बताया मैं ऐसी हूं, लेकिन सच में मैं कैसी हूं, ये मुझसे बेहतर कोई जान सकता है? नहीं। तो अभी तक हम जैसे अल्पज्ञ बुद्धि लोगों ने परमात्मा को जाना और उतना आगे लोगों के साथ शेयर किया। अब एक समय ऐसा आता है जब परमात्मा स्वयं आकर अपना परिचय हमें देते हैं, और वो परिचय आज हम प्राप्त करने जा रहे हैं जो बिल्कुल एक्यूरेट है और सत्य परिचय है, जिसमें ये पांचों कंडीशंस भी फुलफिल होती हैं। यहां दिखाया गया है परमात्मा का सत्य स्वरूप। हम परमात्मा को परम आत्मा कहते हैं, परम प्लस आत्मा, सुप्रीम सोल। दैट मीन्स वो भी एक सोल है, आत्मा है, और आत्मा का स्वरूप है पॉइंट ऑफ लाइट। बिल्कुल सेम परमात्मा का रूप है, वही डिवाइन लाइट का एक छोटा सा पॉइंट, अति सूक्ष्म बिंदु है परमात्मा, लेकिन वो सुप्रीम है। सुप्रीम अर्थात सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। हम सभी आत्माएं हैं, लेकिन हम सभी आत्माओं से भी वो सर्वोच्च है, इसलिए उसको सुप्रीम या परम कहा गया। तो निराकार, ज्योति बिंदु, अविनाशी, ऐसा स्वरूप है परमात्मा का। अब जितना इस स्वरूप को निहारेंगे, देखिए एक अंदर से क्लोजनेस, वो इंटरनल प्यार की फीलिंग जागृत होगी, जो शायद किसी और स्वरूप में होती होगी या नहीं होती होगी, लेकिन अंदर से मन कशिश करेगा इस परमात्मा के रूप पर। उसकी प्यार भरी किरणें ऐसे लगेगा जैसे हमें अपनी तरफ खींच रही है। परमात्मा का नाम, कई लोग कहते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, लेकिन मैं समझती हूं कि जितने धर्म और भाषाएं हैं और उसमें परमात्मा के जितने नाम हैं, उतने नाम तो किसी एक पर्सन के कभी नहीं हो सकते। सहस्त्र नाम भी गाए गए हैं परमात्मा के, लेकिन जितने सभी नाम हैं, उन सभी नामों का अगर हम एसेंस निकालें, तो परमात्मा का बहुत सुंदर नाम हमारे सामने आता है, शिव। शिव का अर्थ यहां बताया गया है, संस्कृत शब्द है शिव, तीन मीनिंग्स है इसके। शिव का अर्थ पॉइंट भी होता है, शिव का अर्थ सीड अर्थात बीज होता है और शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। इसमें आप देखेंगे परमात्मा के नाम में शिव, इस नाम में ही उनका फॉर्म अर्थात पॉइंट ऑफ लाइट ये भी समाया हुआ है, रूप क्लियर हो रहा है, उनके ज्ञान की बात हमें पता चल रही है, उनके नेचर और उनके कर्तव्य की बात हमें पता चल रही है कि वो कल्याणकारी है, हम सबका भला करने वाला, दुख हरता सुख करता, प्यूरिफायर है वो, सभी आत्मा के पापों को खत्म करके हमें फिर से प्योर बनाने वाला, हर तरह के बंधन से छुड़ाने वाला, और इसीलिए उसको कल्याणकारी अर्थात शिव कहा गया। तो परमात्मा का रूप हो गया ज्योति बिंदु, बिल्कुल वैसे जैसे सितारा आत्मा, और नाम है उनका शिव। एक शब्द में ये सारी बातें आ जाती हैं। अब जहां तक बात है परमात्मा की महिमा की, कहते हैं सागर को स्याही बनाओ, धरती को दवात और आसमान को कागज बनाओ, सारे जंगल की लकड़ी को कलम बनाई जाए और खुद विद्या की देवी मां सरस्वती परमात्मा की महिमा लिखने बैठ जाए तो भी वो महिमा पूरी नहीं हो सकती, ऐसी अपरंपार महिमा है परमात्मा की। लेकिन उसमें से भी अगर आज हम परमात्मा को जानने बैठे हैं, उसका परिचय प्राप्त करने बैठे हैं, तो परमात्मा की मुख्य महिमा तो हमें अवश्य पता होनी चाहिए। उसका नाम हमें पता चला, उसका रूप फॉर्म पता चला, अब उसकी महिमा क्या है? जिन सात क्वालिटीज की हमने बात कही थी, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, इन सातों ही क्वालिटीज के परमात्मा सागर है। सागर अलंकारिक रूप में उपमा के तौर पर कहा जाता है, परमात्मा का रूप सागर नहीं है। रूप कैसा है? जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट, बिंदु, लेकिन गुणों में वो सिंधु अर्थात सागर के समान अनलिमिटेड है, अथाह है। हमारे अंदर प्यार की कमी आ सकती है, परमात्मा में कभी नहीं। हम कभी शांत कभी अशांत हो सकते हैं, कभी प्योर कभी इम्प्योर हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा सदा शांति का सागर है, वो सदा पवित्र है, और इसीलिए सदा शिव कहा गया है। तो इन सभी क्वालिटीज का सागर है, इसलिए उनको सुप्रीम कहा गया, परम शक्ति है, हम सबको पतित से पावन बनाने वाले हैं, तीनों लोकों के वो मालिक है। परमात्मा सभी गुणों के सागर सर्वशक्तिमान है। अगर इस मनुष्य सृष्टि को हम कल्प वृक्ष कहे तो इस वृक्ष का बीज रूप है परमात्मा, सभी देवताओं के रचयिता है, हम सबको हर दुख हर बंधन से मुक्त कराने वाले हैं, तीनों कालों को जानने वाले हैं। इस तरह से परमात्मा की जो सारी महिमा है, उस महिमा को हम ध्यान पे रखते हुए जब उनके साथ कनेक्शन जोड़ेंगे, बड़े प्यार से उनको याद करेंगे, तो मेडिटेशन इतना सरल हो जाता है कि छोटे से छोटा बच्चा भी कर सके, और उसके द्वारा होने वाली जो प्राप्तियां है वो अथाह है। फिजिकल नीड्स जो हमारी होती है, शरीर की आवश्यकता है, उसको हम अपनी मेहनत से पूरा कर सकते हैं। कोई मेहनत करने के लिए लाचार है तो किसी से सहयोग लेकर कर सकता है, लेकिन आत्मा की जो नीड्स है, आत्मा की जो आंतरिक आवश्यकता है, उसे सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पूरी कर सकता है। और इसलिए परमात्मा की ये सारी महिमा, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी जो रचयिता है, जो स्वर्ग स्थापन करने वाले हैं, भाग्य विधाता है, ज्ञान दाता है, ऐसे परमात्मा जो रूप में भले बिंदु है, लेकिन इन सभी गुणों के कारण, इन शक्तियों के कारण और अपने परम कर्तव्यों के कारण वो परमात्मा कहलाते हैं। कल हम सबने परमात्मा आत्मा के बारे में समझा था, आज परमात्मा का परिचय मिला, क्या क्या समानताएं हैं इनमें। देखिए, आत्मा और परमात्मा बहुत सारी समानताएं हैं। आत्मा भी निराकार, परमात्मा भी निराकार है, दोनों ही पॉइंट ऑफ लाइट है, एक चेतन शक्ति है, दोनों भौतिक तत्वों से, पांच तत्वों से बने हुए नहीं है, इटर्नल है आत्मा और परमात्मा। ना इनका कभी जन्म हुआ है और ना कभी मृत्यु होने वाली है, और सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, स्वयंभू है, स्वयं प्रकाशित है। लेकिन कुछ डिफरेंस भी है। हम हर आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते, आत्माएं बहुत सारी हैं और परमात्मा सिर्फ एक। सबसे पहला मेन डिफरेंस। इसी तरह से आत्मा गर्भ के द्वारा जन्म लेती, शरीर धारण करती है, जबकि परमात्मा अवतार लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में परमात्मा के बहुत सुंदर महावाक्य है कि मैं प्रकृति के अधीन होकर नहीं, प्रकृति को अधीन करके आता हूं। दैट मीन्स उनका अवतार है। आत्माएं शरीर के साथ कर्म करती है, जबकि परमात्मा अशरीरी है। हम सभी जन्म मरण के साथ साथ दुख सुख और कई तरह के अनुभवों में आते हैं, कर्म बंधनों में आते हैं। परमात्मा इन सभी बंधनों से न्यारा है, तभी तो हम सबको मुक्ति वो दे सकते हैं। जन्म मरण में आने वाली आत्मा कई तरह की भूलें करती है, लेकिन परमात्मा अजन्मा है, और ऐसा अजन्मा परमात्मा हम सभी को भी अनेकों कर्म बंधनों से छुड़ा देता है। हम आत्माएं जितनी भी क्वालिटीज बताई उसका स्वरूप है, कुछ लिमिटेड स्टॉक होता है हमारे पास उन क्वालिटीज का, जबकि परमात्मा, उनकी तुलना सागर के साथ की गई, अनलिमिटेड है। नदी नाले कुएं सूख सकते हैं, लेकिन सागर ना कभी वो कम होता है और ना कभी सूख सकता है। तो ऐसे परमात्मा जो परम है, सर्वोच्च है, और ये जो परमात्मा का परिचय हमने आपको दिया, ये कोई नया भगवान इन्वेंट करके नहीं बताया गया है। परमात्मा के इस ज्योतिबिंदु स्वरूप को, उनके लाइट स्वरूप को एक्चुअली संसार के हर धर्म में माना गया है। आप देखेंगे हिंदू धर्म में जितने भी देवताएं दिखाए गए हैं, अल्टीमेटली उनको भी शिवलिंग की पूजा करते हुए और उनसे शक्ति प्राप्त करते हुए दिखाया गया है। तो ये बात सिद्ध करती है कि देवताओं के भी आराध्य निराकार परमात्मा शिव है, और वो जो शिव की पिंडी दिखाई जाती है वो उसी निराकार का प्रतीक है। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, प्रतीक, सिंबल। सो सिंबल ऑफ शिवा और सिंबल ऑफ ज्योति, इसलिए हम उसको शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग कहते हैं। उसे ही विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, अमरनाथ कहा गया। दैट इंडिकेट्स कि परमात्मा सबके सर्वोच्च है, सबके स्वामी, सबके मालिक है। और ये सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं है, संसार के बाकी धर्मों में भी, जैसे इस्लाम धर्म में, वैसे वो लोग मूर्ति पूजा नहीं मानते, लेकिन हज के लिए मक्का जाते हैं तो वहां पर जो संगे अस्वद, काबा का पत्थर है, जिसे वो चूम कर उसके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं, वास्तव में वो उसी निराकार परमात्मा का प्रतीक है। इसलिए उसको कोई चेहरा, कान, आंखें या हाथ पैर नहीं दिखाए गए, वो अल्लाह कहते हैं उसको। अल्लाह का मतलब ही होता है प्रकाश। सिमिलरली गौतम बुद्ध है या महावीर जैन है, उन सभी ने भी परमात्मा के निराकार रूप की ही पूजा की, कभी भी उन्होंने साकार रूप में परमात्मा को नहीं माना। बौद्ध धर्म के लोग जापान में जब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो एक लाल पत्थर लेकर उसको अपने सामने रखकर उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जिसे वो नाम देते हैं चिंकोंसे की, दैट मीन्स गिवर ऑफ पीस। तो शांति का दाता उन्होंने भी परमात्मा को निराकार रूप में ही माना। जीसस क्राइस्ट ने तो क्लियर बोला, गॉड इज लाइट। उन्होंने अपने आप को कभी भी भगवान नहीं कहा है, आई एम सन ऑफ गॉड कहा, और गॉड के बारे में क्या परिचय दिया, कि वो लाइट है, प्रकाश है। गुरु नानक देव जी ने तो इतनी क्लियर महिमा परमात्मा की है कि किस तरह से वो एकोंकार, निराकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्भय, निर्वैर, इतनी एक्यूरेट महिमा परमात्मा की उन्होंने बताई हुई है। तो इन सभी धर्म पिताओं ने या देवताओं ने किसको अपना आराध्य माना, किसको अपना सर्वोच्च माना? उस निराकार परमपिता परमात्मा को। हम देखते हैं मंदिरों में जो दिए जलाए जाते हैं, गुरुद्वारे में ज्योत जगाते हैं या चर्च में कैंडल्स जलाते हैं, वो सभी उस परमात्मा जो लाइट है और निराकार स्वरूप है उसी के प्रतीकात्मक है। और जबकि इतने सभी धर्मों ने बेसिक रूप से परमात्मा को उसी निराकार रूप में माना है, और फिर हम सभी लेकर बैठ जाते कि तुम्हारा धर्म अलग और हमारा अलग, जबकि बहुत स्पष्ट है कि सभी धर्म आत्माओं के, सभी धर्म पिताओं के भी पिता एक परमपिता परमात्मा है। और इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा ने आकर जब अपना सत्य परिचय दिया तो ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया कि ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, धर्म के आधार पर भले भाई भाई नहीं, शरीर के आधार पर भी हम सबके पिता अलग है, लेकिन आत्मा के नाते हम सभी आत्माएं एक परमपिता परमात्मा की संतान, उसके बच्चे हैं, और इसीलिए हम सभी आपस में एक परिवार हो गए। वसुधैव कुटुंबकम जो भारत की संस्कृति है, ये इस कॉन्सेप्ट से क्लियर होती है। अदरवाइज कैसे कहेंगे हम भाई भाई, कैसे कहेंगे कि हम एक परिवार है? जब परिवार का मुखिया एक हो, जब सभी बच्चों का पिता एक हो, तभी तो फैमिली कहलाएंगे ना। तो वो एक पिता ज्योतिबिंदु निराकार शिव परमात्मा, ये परमात्मा का कंप्लीट परिचय जो हम सबको मिलता है। फिर बात आती है कि अगर हम उसको मिलना चाहते हैं, चाहेंगे? परिचय मिला लेकिन मिलना तो अभी बाकी है ना। तो मिलना है तो उसका एड्रेस पता होना चाहिए कि वो रहता कहाँ है। तो क्या मानते हैं हम? बचपन से हम सबको ये बात पक्की कराई गई है, न सिर्फ घर के बड़ों ने लेकिन धर्म के बड़ों के द्वारा भी, कि परमात्मा कण कण में व्यापक है। तो इस बात को भी हम समझेंगे, कहाँ रहते हैं परमात्मा। सिंपल से कुछ प्रश्न मैं पूछ रही हूं आप सभी को। अगर परमात्मा सब में है तो हम उसको खोज क्यों रहे हैं? उसको ढूंढने के लिए अलग अलग स्थानों पर क्यों भटक रहे हैं? अगर वो सब में है तो हम बीमार और दुखी क्यों हो रहे हैं? एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जब लोहार लोहे की ईंट को या लोहे के पीस को आग में डालता है, वो आग उसमें प्रवेश कर जाती है, क्योंकि आग ज्यादा पावरफुल है तो वो लोहे को भी अपने जैसा लाल और गर्म कर देती है। अगर परमात्मा सब में है तो हम उसके जैसे क्यों नहीं है? वो तो प्यार का सागर है, वो तो शांति का सागर है, वो सर्वशक्तिमान है, निर्भय निर्वैर है। हम तो बहुत सारों से प्यार के बदले नफरत कर रहे, वैर कर रहे हैं, अशांत हो रहे, दुखी हो रहे हैं। जब आग लोहे को अपने जैसा बना सकती है, परमात्मा अगर मेरे अंदर उपस्थित है, विद्यमान है, तो मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूं? होना चाहिए ना, क्यों नहीं है? वो प्यार का सागर और हम नफरत के सागर बने हुए हैं। क्यों है ऐसा? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार रहा है, क्या मारने वाला भी परमात्मा, मरने वाला भी परमात्मा है? किसी पर अत्याचार हो रहा है, क्या परमात्मा ऐसे पाप कर्म कर रहा है? शायद इन्हीं बातों का जवाब जिनको नहीं मिला या लॉजिकली जो खुद को नहीं सेटिस्फाई कर पाए, वो नास्तिक बन गए। कि भगवान के होते आप कहते हो कि भगवान सब में, फिर ऐसे पाप क्यों हो रहे हैं? लेकिन यहां नास्तिक बनने की बात नहीं, सिर्फ ये समझने की बात है कि ये कर्म सारे इंसान कर रहा है। इंसान मनुष्य जिसके पास अपनी अथॉरिटी है कर्म करने की शरीर के द्वारा, वो खुद कर रहा है। हाँ, भगवान है जरूर, लेकिन सबके अंदर नहीं है। अगर वो सबके अंदर होता तो वो अपने आने का समय क्यों बताते कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतरित होकर अधर्म का विनाश और सद्धर्म की स्थापना करूंगा। अगर भगवान अपने आने का समय और अपना कर्तव्य बता रहे हैं, इसका अर्थ ही ये है कि वो हर जगह विद्यमान नहीं है। ही इज नॉट ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी नहीं है परमात्मा। अगर सर्वव्यापी होता तो संसार का चित्र ही कुछ और होता, इमेजिनेशन से भी परे। लेकिन ऐसा नहीं है। हम सबके दिल में उसके प्रति प्यार है, दिल में हमारे उसके प्रति भावनाएं हैं, लेकिन भावनाएं या प्यार होने का मतलब ये नहीं होता कि वो हमारे अंदर है। जैसे कोई व्यक्ति किसी से प्यार करता है तो भी तो बोलता है ना कि आप हमारे दिल में रहते हो। अब वो पर्सन तो 5-6 फीट का, दिल इतना छोटा सा मुट्ठी भर, परमात्मा वो व्यक्ति तो नहीं होता ना, लिटरली लेने की बात नहीं होती। जो हमारे से पहले जो बहुत ज्ञानी पुरुष संत महात्माएं होकर गए, उन्होंने शायद ज्ञान के आधार पर और अपने प्यार की फीलिंग्स के आधार पर यह बात कही थी, या इंसान को पाप कर्मों से डराने के लिए यह बात कही गई थी कि देखो कहीं किसी को दुख नहीं देना, कोई पाप नहीं करना, क्योंकि भगवान सब देखता है, क्योंकि वो सब जगह उपस्थित है। ना तो हमने उनके प्यार को समझा, ना उनके उस लॉजिक को समझा कि वो हमें पाप कर्मों से बचाना चाह रहे, हमने सिर्फ शब्दों को पकड़ लिया। परमात्मा सर्वोच्च शक्ति है और उसको हर जगह विद्यमान होने की जरूरत नहीं है। आज साइंस के आधार पर हम एक जगह पर ठहर के चंद्रयान को कंट्रोल कर रहे हैं, कितना दूर। तो परमात्मा, साइंस तो हम सबकी रचना है ना, और हमारा भी जो क्रिएटर है परमात्मा, उसको हम सबको कंट्रोल करने के लिए, हम इस सारी दुनिया को चलाने के लिए सब में विद्यमान होने की, सब जगह उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। वो एक जगह पर रहकर अपनी सर्वशक्तियों को प्रयोग करते हुए इस संसार को चला सकता है। और वो परमात्मा का स्थान कौन सा है? जब भी हम याद करते कहां नजर जाती है, उंगली से कहां इशारा करते? ऊपर। तो परमात्मा का स्थान सूर्य चांद तारों से भी पार, फरिश्तों की दुनिया से भी परे, परम धाम निर्वाण धाम, उस दुनिया का वो रहने वाला है। वैसे भी बाप और बच्चों का घर एक ही होता है ना, वो बात अलग है कि बच्चे अपने कारोबार के निमित्त कहीं और जाकर सेटल हो जाते हैं, फिर भी कहने में हमेशा क्या आएगा, जब कोई पूछेगा आप कहां के हो तो कहेंगे बिलोंग तो हम वहां से करते हैं, बाकी अभी जॉब या बिजनेस के कारण यहां है। तो ऐसे परमात्मा का घर सो हम सभी आत्माओं का घर, परम धाम निर्वाण धाम, और वहां से हम सभी इस कर्म क्षेत्र पर आए हुए हैं, यहां पर इस नाटक में पार्ट प्ले करने के लिए। तो परमात्मा का घर वो ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म परमेश्वर जिसके लिए उसको कहा गया, उस ब्रह्मलोक का वो रहने वाला इस संसार में आता है जब अधर्म होता है, तब आकर सत्य ज्ञान देकर, कर्मों की सही समझ देकर, मेडिटेशन के द्वारा जो शक्ति हमें मिलती है उस आधार पर हमें परिवर्तित करता है, और इसीलिए उसको बिगड़ी को बनाने वाला कहा गया। तो ऐसे परमात्मा जो परमधाम निवासी है, उस परमात्मा को याद करने के लिए परिचय के साथ साथ उसके साथ हमारा जो संबंध है वो भी हमें पता हो। वो निराकार है, मेल या फीमेल नहीं है, ज्योति बिंदु है वो, और इसलिए जिस भी रिलेशन को हम उनके साथ महसूस करना चाहे कर सकते हैं। इसलिए गाया गया है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। हर संबंध उस परमात्मा के साथ जोड़कर उस संबंध का प्यार, उस संबंध का सुख हम अनुभव कर सकते हैं। और इसी संबंध को ही हम राजयोग कहते हैं। परमात्मा के साथ लिंक जोड़कर ये सभी प्राप्तियां करना, यही राजयोग के लाभ है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्व गुणों का सागर है, लेकिन उनसे वो सब कुछ प्राप्त करने के लिए उनके साथ लिंक जोड़ना जरूरी है, अपने रिसीवर को सेट करना जरूरी है। और वो रिसीवर को सेट करना, माइंड को सही रीति से सेट करना, यही विधि राजयोग हमें सिखाता है, जिसके बारे में हम कल के सेशन में जानेंगे। अब जहां हम सभी संबंधों की बात कर रहे थे, तो सब संबंध अगर एक साथ नहीं भी हम महसूस कर पाते, एक संबंध आज से जरूर हम अनुभव करना शुरू करेंगे, जो इटर्नल रिलेशन है परमात्मा के साथ हमारा। कौन सा? वो हमारे पिता है, हम सभी आत्माओं के पिता, शरीर के नहीं। अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भले आप शरीर के पिता का नाम यूज करते रहे, लेकिन एक आध्यात्मिक पहचान के साथ जब हम जीवन में चलेंगे, तो अंदर से ये बहुत अच्छे से स्मृति रहे कि मैं आत्मा, उस परम पिता परमात्मा की संतान। यूं तो सभी संतान है, लेकिन अगर उसके साथ और गहरा रिश्ता हमें जोड़ना है, तो उसके प्रति मेरापन लाइए बड़े प्यार से, कि वो मेरा पिता है। भले सारे संसार की आत्माएं परमात्मा की संतान हैं, लेकिन मैं उसका सबसे लाडला बच्चा हूं। उतना देखिए प्यार महसूस होगा। बचपन में हम करते थे ना, मेरी मम्मी मेरी मम्मी, तो उतना ज्यादा प्यार आता है। तो जितना आप मेरा कहेंगे ना भगवान को, वो मेरा पिता है, तो मेरापन हमारा उसके प्रति प्यार क्रिएट करेगा। किसी और चीज में अगर लगाव अटैचमेंट होगा, मे भी वो नुकसान करे, लेकिन परमात्मा में अटैचमेंट हो तो आत्मा की उन्नति ही होगी, आत्मा उसके ही संग के रंग में रंगती जाएगी। और कैसा होगा वो रंग? प्यार का, शांति का, सर्वशक्तियों का, वो आध्यात्मिकता का रंग हमें लगता जाएगा, जिससे जीवन तो सवर ही जाएगी, लेकिन हमारे द्वारा औरों को भी सदा सुख मिलता रहेगा। वो चार्ज पर्सनालिटी हमारी बनती जाएगी, क्योंकि सुप्रीम चार्जर, सुप्रीम पावर हाउस के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ जाएगा। तो सार रूप में परमात्मा के परिचय में कौन कौन सी बातें पता चली? आप सभी बोलेंगे, नाम उनका क्या है? शिव। रूप कैसा है? ज्योतिबिंदु, निराकार। वो रहते कहाँ हैं? परम धाम, ब्रह्मलोक के वो वासी हैं। यहां कब आते हैं? जब धर्म की हानि होती है। आपको आगे के लेसन्स में पता चलेगा, वो प्रेजेंट टाइम, अभी वो टाइम चल रहा है, तभी तो परमात्मा ने आकर हम सबको परिचय दिया है। और करते क्या है? करते क्या है? परमात्मा के कर्तव्य हम सबको पावन बनाते हैं, हम सबका भला करते हैं, हमारा कल्याण करते हैं, हम पर प्यार बरसाते, हमें सभी दुखों से छुड़ाते, इसलिए कल्याणकारी उनको कहा गया। उनके गुणों की महिमा हम सबने सुनी, सभी गुणों के वो सागर है, सर्वशक्तिमान है, परम पवित्र है, ज्ञानदाता, भाग्य विधाता है। तो ऐसे परमात्मा के सारे परिचय की सभी बातें जब हमें पता चल गई, और लास्ट ये बात रहती है उसके साथ संबंध। यूं तो सभी संबंध है, लेकिन एक पक्का वाला संबंध हम जोड़ेंगे, कौन सा? पिता का। क्योंकि ये कोई एक जन्म का संबंध नहीं है, हर जन्म में चाहे हम शरीर में रहे या नहीं रहे, वो हमारे पिता थे, है और सदा रहेंगे। अटूट अविनाशी रिश्ता है भगवान के साथ। और इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज में, वैसे भी दुनिया की किसी भी संस्कृति में पिता को नाम से नहीं बुलाया जाता, नहीं बुलाते ना, बताने में भले बता देंगे, पता होगा नाम, लेकिन नाम से बुलाया नहीं जाता। उसको कोई रिस्पेक्टफुल लवफुल ऐसा वर्ड यूज किया जाता है। जैसे भारत में हो तो आप बाबा पिताजी पिताश्री ऐसे बोलेंगे, या आजकल मॉडर्न जमाने के हिसाब से पापा डैडी ऐसी बातें बोलेंगे हम। तो परमात्मा भी, परमात्मा उसका डेजिग्नेशन है, सुप्रीम है वो, लेकिन मेरा क्या लगता है, पिता। तो हम बड़े प्यार से यहां उनको कहते हैं शिव बाबा, सिंपली बाबा भी कह सकते हैं या फिर शिव बाबा, दिल से, शब्दों में नहीं। सिर्फ शब्दों वाला हमने खेल बहुत खेल लिया, कई सारे जन्म उसमें बिता दिए, अब दिल से वो कनेक्शन फील करते हुए कि वो मेरा बाबा है, मेरा असली पिता, मेरा अविनाशी पिता। और वो पिता और पुत्र का, बाप और बच्चे का रिलेशन आज सारा दिन आपको अनुभव करना है। बड़ी सारी ज्ञान की बातें हम सुनेंगे सारा दिन, चर्चाएं होंगी आपके फील्ड के हिसाब से भी, लेकिन सारा दिन चलते फिरते, जब आप भोजन करेंगे, इवन जब आप सोएंगे, तब भी परमात्मा की उस छत्र छाया को, उसके प्यार को, एक पिता के प्यार को हमें महसूस करना है। करेंगे? ये आज का आप सबका होमवर्क है, उस परम पिता के प्यार को अनुभव करना। देहधारी अपने जैसे लोगों का प्यार तो बहुत कर लिया अनुभव, उस प्यार के सागर का प्यार आज सारा दिन अनुभव करेंगे। तो चलिए कुछ मिनट हम मेडिटेशन करते हैं, गाइडेड मेडिटेशन। हम कुछ बोलेंगे, आप उसको मुख से नहीं लेकिन मन में रिपीट करते हुए महसूस करेंगे। ओम शांति। इस शांत वातावरण में आइए अपने मन को एकाग्र करें, मनुष्य शरीर में मस्तक के बीच विराजमान मैं एक ज्योतिबिंदु सितारा, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा, मन की आंखों से मस्तक में चमकते हुए उस नन्हे से सितारे को देखें, सफेद प्रकाश का अति सूक्ष्म बिंदु, मैं आत्मा। बड़े प्यार से आज मैं अपने परम पिता को, उस परम शक्ति को अपने पास आवाहन करता हूं। दिल की प्यार भरी आवाज नीले गगन से पार रहने वाले प्यारे पिता परमात्मा के पास पहुंच जाती है, और वो हमसे मिलने के लिए इस धरा पर आ रहा है। विजुलाइज करें, देखें मन की आंखों से वो दिव्य चमकता हुआ सितारा, अनंत शक्तिवान, अपनी जगमगाती हुई किरणें फैलाता मेरे पास आ रहा है। मेरे बिल्कुल सामने निहारे उसके परम सुंदर स्वरूप को, वह सत्यम शिवम सुंदरम, प्यार का सागर। मेरा पिता, सदियों तक जिसे ढूंढते रहे, आज वो मेरे सम्मुख है। जिसके परिचय के बिना न जाने कहां कहां भटकते रहे, आज वही परम पिता स्वयं भगवान मेरे सामने, उनके दिव्य शक्तियों की किरणें, असीम प्यार के वाइब्रेशंस अपने मस्तक पर महसूस करें। एकाग्र मन से परमात्मा मिलन का सुख ले। लगातार परमात्मा की किरणें मस्तक पर अनुभव करते अपने आप को सशक्त होता हुआ महसूस करे। परमपिता की गोद में उसके किरणों की छत्र छाया में स्वयं को सुरक्षित निश्चिंत अनुभव करे। स्वयं भगवान मेरा साथी, मेरा सच्चा पिता, मेरा रक्षक, एक सुकून वाली अवस्था, मन की शांत और संतुष्ट स्थिति अनुभव करें। मन ही मन परमात्मा से बात करें। मीठे शिव बाबा, मैं आपका बच्चा अब आपको जान गया हूं, पहचान गया हूं। अब मैं सदा आपकी छत्र छाया में आपकी प्यार की गोदी में रहूं। ये साथ सदा बना रहे। प्यार के सागर के प्यार से स्वयं को भरपूर करते मन को निश्चिंत। रिलैक्स महसूस करें। सारा दिन परमात्मा साथ को, अपने परम पिता के प्यार को महसूस करते रहें। ओम शांति।